वीतराग विद्या नमो ताहि जाते भये अरहंता जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु के तेषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेश वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयानी सतत केवल ज्ञान पानी पूजूं के सतत केवल ज्ञान पानी। बोले भगवान महावीर स्वामी के पर्वराज दस लक्षण पर्व की आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज सबने पिछले दिनों बैठकर एक साथ धर्म ध्यान किया है। आज भी हमारे जीवन में एक दिन ये मान करके कि एक दिन और मिला है, हम सब धर्म ध्यान करने बैठे हैं। मुझे सबसे अच्छा अगर जीवन में कोई पूछे कि क्या अच्छा लगता है तो मुझे जब सब लोग एक साथ बैठकर राग द्वेष छोड़कर धर्म ध्यान करते हैं तब मुझे सबसे अच्छा। जीवन में बहुत कम अवसर हैं जबकि अपन बैठें और अपने आत्मा के विकास के लिए बातें करें। पाप के लिए अवसर बहुत हैं। रोज सुबह से शाम तक रात होने तक पाप के लिए अनेक अनेक अवसर मिलते हैं और हम उन अवसरों को पाकर के अपने मन को वचन को और शरीर को पाप में लगाए रखते हैं। बहुत थोड़े जीवन के अवसर हैं। अगर कोई हिसाब लगावे तो जीवन 60-70 वर्ष का है, उसमें से कितना जीवन हमारा धर्म में बीता और कितना पापकारी में बीता तो पूरे जीवन का 10% ही निकलेगा, जिसमें कि हमने धर्म के कार्य किए 90% तो पाप के कार्य में ही चला। भैया ये अपने को अच्छा अवसर मिला कि अपन ने एक साथ बैठ करके और बड़े आनंद के साथ दस लक्षण पर्व मनाया। आज आखिरी धर्म है ब्रह्मचर्य धर्म। आकाश की तरह निर्मल हो जाने का नाम ब्रह्मचर्य है। मैं तो ब्रह्मचर्य की ऐसी ही परिभाषा बनाता हूं, परिणामों की जितनी निर्मलता होवे, जितना हमारे अंदर अपने ही आत्मा से प्रेम होवे उतना ब्रह्मचर्य है और जितना जिसका शरीर से प्रेम है सो वो सब ब्रह्मचर्य से दूर जाने का रास्ता है। और आज वर्तमान में देखा जावे तो अपने और दूसरे के शरीर के प्रति जितना राग है उतना राग अपने और दूसरे के आत्मा के प्रति नहीं है। हमारी दृष्टि ऐसी निर्मल हो जावे कि शरीर में बैठी हुई आत्मा से हमारा प्रेम होवे, चाहे वो अपने शरीर में बैठी आत्मा होवे और चाहे दूसरे के शरीर में बैठी। और अगर आत्मा से स्नेह होवे, आत्मा से अनुराग होवे तो फिर शरीर तो बीच में ही नहीं है। पांचों इंद्रियों के विषयों को जीतने की बात आती है सो वो क्यों हम नहीं जीत पाते, क्योंकि हमारी आसक्ति शरीर में है, जो शरीर के पोषण के लिए हम इंद्रियों का पोषण करते हैं। और अगर आत्मा के पोषण की बात दृष्टि में आ जावे तो इंद्रियों के पोषण के लिए, शरीर के पोषण के लिए फुर्सत ही नहीं मिले। हम तो अपने आत्मा के पोषण में लगे हैं, ऐसा अगर हमारा दृष्टिकोण हो जावे तो बहुत आसान। तो आकाश के समान, जैसे आकाश में कितने ही बादल घिर जावे लेकिन आकाश निर्मल ही बना रहता है, ठीक ऐसा ही आत्मा का निर्मलता का स्वभाव है। उसका शील क्या है? उसका स्वभाव निर्मलता है, लेकिन कामनाओं के, इच्छाओं के, वासनाओं के बादल समय समय पर हमारे आत्मा के आकाश में घिर जाते हैं तो आकाश की निर्मलता दिखाई नहीं पड़ती है, मलिनता आने लगती है। कहते उस मलिनता को जो जितना हटावे और जो अपने आत्मा को जितना निर्मल बनावे, परिणामों को जितना निर्मल बनावे, वो ही ब्रह्मचर्य के निकट है। उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, माता बहन सुता पहचानो। इतने में ही ब्रह्मचर्य कह दिया, गृहस्थ के लिए भी, साधु के लिए भी, सबके लिए कह दिया कि उत्तम ब्रह्मचर्य तो वो है कि हमारी दृष्टि कैसी हो गई, माता बहन सुता पहचानो। अगर कहीं बाह्य में सबसे पहले कहते कि कोई जीव दिखाई पड़े तो समझना कि जीव है, बस अब स्त्री पुरुष का भेद न करना, दृष्टि तो श्रेष्ठ यही है। और अगर भेद हो जावे तो कोई बात नहीं, तो कैसी पहचान करना? कहते अपने से बड़ी होवे तो माता के समान उसके प्रति भाव रखना, अपने समान होवे तो बहन के समान, छोटी होवे तो बिटिया के समान। हमारे भावों में अगर ऐसी पहचान बनी रहे तो हमारा ब्रह्मचर्य सदा हुआ है, अन्यथा दृष्टि अपनी बिगड़ी और फिर तो अपने वश में रहता नहीं, इच्छाएं कामनाएं घेर लेती हैं। इसलिए जब कहते अनिर्वारो द्रेक त्रिभुवन जयी काम सुबठा कुमारावस्था याम पिनज बला देन विजिता, भगवान जिसका उद्रेक किसी संसार के जीव से रोका नहीं जा सकता, अनिर्वारो उद्रेक त्रिभुवन जयी, अरे जिसने तीनों लोकों को जीत लिया है, ऐसे काम रूपी सुभट को आपने अपने कुमार अवस्था में ही आत्मा के बल से जीत लिया था, सो जीत करके क्या पाया? कहते ऐसा आनंद का राज पाया, मोक्ष का राज पाया। सो आप ही जिनेंद्र हो, ऐसे ही महावीर स्वामी मेरे नयनों से आकर हृदय देश में बैठो। क्यों अपन भगवान की स्तुति करते? इसीलिए करते हैं कि उन्होंने अपने उस काम को जीत लिया है। ब्रह्मचर्य का दूसरा अर्थ ये भी है कि अपनी इच्छाओं और कामनाओं और वासनाओं को जीत लेना, लेकिन इतना आसान नहीं है जीतना। दृष्टि जब तक न बदले तब तक तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और उस दृष्टि के बदलने को ही प्रयत्न करना चाहिए। मुझे, मैंने कहा था कि जब इस दिन आएगा तो सुनाऊंगा वो कविता, आचार्य श्री ने मुझे सन 80 में सुनाई थी, कहीं पड़ी होगी उन्होंने। ब्रह्मचर्य ऐसी आसान सी चीज नहीं है, ब्रह्मचर्य तो मन की निर्मलता का काम है। कहते अभी तुमने आग के रंग के कपड़े पहने हैं, तुम्हारी वासना अभी आग में जलकर नष्ट नहीं हुई। अभी तुमने जैसे कोई गेरुआ वस्त्र पहन ले, आग के रंग के कपड़े पहन ले, तो कहते अभी तुमने आग के रंग के कपड़े पहने हैं, अभी तुम्हारी काम वासना योग की आग में जलकर नष्ट नहीं हुई, अभी तुम्हें स्त्री और पुरुष में फर्क नजर आता है, अभी तुम्हें स्त्री और पुरुष में फर्क नजर आता है। अरे स्त्री के पीछे भागना और स्त्री से दूर भागना, यात्रा दोनों में जारी है। स्त्री के पीछे भागना या स्त्री से दूर भागना, यात्रा दोनों में जारी है। जब तक ये यात्रा जारी है तब तक तुम्हारी अपनी योग की साधना पूरी नहीं हुई, ऐसी परिभाषा बनाई है ब्रह्मचर्य की। दृष्ट हम जहां हैं वहीं के वहीं हैं, लेकिन हमारी दृष्टि निर्मल हो गई, हम हमेशा इस अवसर पर एक घटना सुनाते हैं कि हम तो जानते नहीं थे, आचार्य महाराज के पास जाते थे 76-77 में, तो हमारे एक बुआ जी थी, तो उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया। जब वो बाहर आई तो हमने कहा कि ये क्या होता है। अब वो बहुत मुश्किल में पड़ी कि अब इसको पूरी चीज बताना पड़ेगी कि क्या होता है ब्रह्मचर्य। कह नहीं, कभी बताएंगे, अभी नहीं, अभी तुम छोटे हो। हमने कहा ठीक, अपन क्या समझे। जितना पहले ऐसा तो था कि बड़े लोगों ने अगर किसी चीज की कह दी तो अपन ज्यादा तर्क वितर्क नहीं कर सकते। अब तो एक एक चीज जो है न जानवे की हो तो चेष्टा जानने की करते हैं। तो उनने कह दिया, अपन ने कहा ठीक। हम एक दिन उनके घर पहुंचे तो बैठे हुए थे, चर्चा चल रही थी, उतने में ही जो जिनसे उनका संबंध है तो वो आ गए। वो कौन हुए? फूफा हुए हैं, ऐसे ही कर लो। तो वो आ गए। अब हमको ये बहुत कम, अभी भी हमको समझ में नहीं आती चीजें, ये रिश्ते विश्ते कौन क्या कहलाता। हम तो इतने ही पूछते थे घर में, कोई आ गया तो मां से पूछ ले इनके पांव पन्ने के नहीं पन्ने, अपन ने हुए तो अपन पढ़ लियो, नहीं तो एक तरफ ही अपने पढ़ाई लिखाई में लगे रहो। अब कौन है, कहां से आए, ये उतना दिमाग चला नहीं कभी। और इकट्ठे हमने आप आश्चर्य करोगे, एक तो जे हमसे नहीं बना और दूसरे वे रुपया गिन तो नहीं बने। आप आश्चर्य करेंगे, हमने इकट्ठे 1,000-2,000 रुपए गिने नहीं, रखे हैं, ठीक है रखे रहने, जितने काम के हैं फीस चुकता करने उतनी कर दी, उसके अलावा। तो मैं बात वो कह रहा था आपसे दूसरी, कि वहां पहुंचा और वो आए, मैं बैठा था कुर्सी पर, उन्होंने कहा बुआ ने कि यहाँ आओ बैठो। वो पलंग पर बैठी थी तो मुझे यहाँ पर बाजू में बिठा लिया, और वो जो फूफा जी आए तो उनको यहाँ बिठा लिया। दोनों बाजू में दोनों बैठे हैं, दोनों के ऊपर उन्होंने हाथ रख लिया। फिर मेले से बोली कि तुम पूछते थे ब्रह्मचर्य क्या होता है, तो क्या बताऊं, अब तुम्हें कैसे समझाऊं। जिस दिन जैसी मेरी धारा तुम्हारे ऊपर रखे हाथ में बह रही, ऐसे ही जिस दिन इस तरफ के हाथ पे भी बहने लगेगी, उस दिन मेरा ब्रह्मचर्य हो जाए। आई आपके बात समझ में? आई तो होगी। ऐसा है ये परिणामों की निर्मलता का काम। इसीलिए खतौनी करने में तीन ही में खतौनी कर ली, चौथी नहीं करी। माता बहन सुता पहचानो, और उसके अलावा चौथा रिश्ता नहीं बनाना, इतना ही पर्याप्त है, तो तुम्हारा ब्रह्मचर्य बना रहेगा। जैनेन्द्र कुमार ने तो लिखा कि गृहस्थ के लिए ब्रह्मचर्य इतना ही है कि मैं अपने पिता की जीवन साथी को अपनी मां मानता हूं। देखो गौर से सुनना, मैं अपने पिता की जीवन साथी को अपनी मां मानता हूं, और अब तो मैं अपने बच्चों की मां को भी मां मानने लगा हूं, यही मेरा ब्रह्मचर्य है। देखो आप, ऐसी है परिणामों की निर्मलता। बापू बैठे हैं सभा में और बा आ गई कस्तूरवा, सो पास में आकर के बैठी। किसी कार्यकर्ता को मालूम नहीं था तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो ऐसी लगती हैं जैसे कि बापू की मां हो। अब ले बापू ने सुन लिया तो बापू ने कहा कि हां ये मेरी मां ही तो हैं, आज से तो और निश्चित हो गया। अरे सब लोग चौंक गए कि बात तो उनकी जीवन साथी हैं, मां कैसे हो गई। बोले इन्होंने कह दिया तो अब मेरे मन में भी वे मां के समान हो गई। मैं सोचता हूं वे मुझे सुबह से उठा करके कपड़े तैयार करती हैं, उठो नहा धो लो, नहलाने धुलाने में मदद करती, कपड़े पहना देती, फिर बैठ जाती, भोजन कराती, पंखा झलती रहती। मैं परेशान हो जाऊं तो सिर पे हाथ फेर करके और गोद में रख लेती। अरे मां के समान तो ये मेरा सब सेवा टहल सुबह से शाम तक करती हैं, सो मेरे लिए तो मां हो गई। उस दिन से कहते हैं कि बापू ने कस्तूरवा के साथ बेटे के समान व्यवहार किया। अरे बहुत कठिन है, कहना बहुत आसान है, लेकिन ऐसे परिणामों की विशुद्धि, ऐसे परिणामों की निर्मलता होना गृहस्थी में भी संभव है। ऐसे उदाहरण आज भी हैं। अपन तो पुरानी घटनाएं भी याद करें तो ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे। और पूजा में जो लिखा हुआ है कि संसार में बिसवेल नारी तज गए जोगी स्वरा, सो भैया जा लाइन जैसी लिखी सो वैसे ही मानो, इसको पलटो अल्टो ने, जैसी लिखी सो एकदम ठीक लिखी। संसार में विश्वेल नारी तज गए जोगीश्वरा, बहुत बुद्धिमान आदमी ने लिखी किसी ने, और हम उसमें सुधार करते सुधारों ने, वो हमें इशारा कर रहा है कि हम कहना क्या चाह रहे। उसमें लिखने वाले ने ये नहीं लिखा कि संसार में विश्वेल माँ तज गए जोगीश्वरा, संसार में विश्वेल बहन तज गए जोगीश्वरा, संसार में विश्वेल बिटिया नारी तज गए। वो हमारी अपनी आकांक्षा और वासना है जो उसमें नारी देखती है। माँ देखे तो कोई हर्ज ही नहीं, बहन दिखाई पड़े तो कोई हर्जा ही नहीं है, फिर विश्वेल नहीं है। अगर हम उसे विश्वेल मान लेंगे तो भैया हम कहां से आए, उसमें लगने वाला फल तो विश्वल ही कहलाएगा। तीर्थंकर की माखों भी क्या विश्वेल मानोगे, अरे नहीं, उसमें तो तीर्थंकर की माँ से तो तीर्थंकर जैसा अमृत फल प्राप्त होता है, विश्वेल वो नहीं है। हमारे अपने अंदर की जो वासना है जो हम उसमें दूसरे में आरोपित करते हैं वो विश्वेल है। ऐसी दृष्टि की निर्मलता, मैं तो सोचता हूं कि अंतरंग में मातृत्व तो इतना विस्तार पावे कि संसार में जो भी दिखाई पड़े उस सब के प्रति मातृत्व का भाव आ जावे। ब्रह्मचरी तो विशुद्ध मातृत्व की बात है, अंतरंग में जीवन में परिणामों में इस प्रकार की बात आनी चाहिए। जब बुद्ध के समय में देवी आम्रपाली बहुत सुंदर हुआ करती थी, वे एक बार सब भिक्षुओं के बीच बुद्ध के दर्शन करने आना चाहती थी, तो एक जारी की गई आज्ञा कि जब देवी आम्रपाली आवे तो कोई भिक्षु आंख उठाकर नीची ऊंची ना करे, आंख नीची करे रहे। तो भिक्षुओं के मन में आया कि अगर देखने का मन हो जावे तो दूसरी आज्ञा जारी हुई कि अगर भिक्षु का मन देखने का है तो कोई हर्जा नहीं, देखे लेकिन अपनी तरफ से नहीं, दिख जावे सहज रूप से तो देखें। तो भिक्षु ने, तीसरे भिक्षु ने और पूछा कि भगवान अगर अपने आप नहीं दिखे और देखने की इच्छा हो जाए तो तीसरी आज्ञा जारी हुई थी कि ठीक है भिक्षुओं को आदेश दे दो, वे देवी आम्रपाली को देखना चाहें तो देखें, लेकिन ध्यान रहे आसक्त ना हो। देखने में कोई हर्जा नहीं, आंख फोड़ने अकेले से कोई को मोक्ष नहीं होता, लेकिन दृष्टि निर्मल हो जावे तो मोक्ष हो जाता। आंख वाले को ही होता, बिना आंख वाले को नहीं होता। तो उस समय में पढ़कर के मैं दंग रह गया कि ठीक लिखा है कि हम दृष्टि को आसक्त ना होने दें, व्यक्ति में और वस्तु में हम अपने परिणामों को निर्मल बनाए रखें। और भी कई उदाहरण इसके आते हैं। ऐसे मौके पर तो मुझे सबसे अच्छा उदाहरण याद आता है किसका, कुलभूषण देशभूषण महाराज का, सबको मालूम होगा। और एक उदाहरण आता है विजय और विजया का, ये दोनों अलग अलग अपने माता पिता के यहाँ पर पले, और विजय नाम के बेटे ने महाराज जी के पास शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचरी ले लिया, विजया नाम की बिटिया ने माता जी के पास कृष्ण पक्ष का ले लिया, और संयोग ऐसा हुआ कि दोनों का विवाह हो गया। पूछा ही नहीं, दोनों ने अलग अलग व्रत लिए थे और विवाह हो गया। अब पहला ही दिन था तो उसने कहा कि तुम मेरे व्रत में सहयोग करना, मेरा शुक्ल पक्ष का व्रत है। अब वो जिससे विवाह हुआ वो तो रोने लगी, तो इसने कहा कि अरे तुम इतना दुखी क्यों होते हो, हमने तो 15 दिन का तो लिया ही हुआ है। उसने कहा नहीं, तुम चाहो तो दूसरे से विवाह कर लो। उसने कहा ऐसी क्या बात हो गई, हमने जीवन भर का थोड़ी लिया, 1 महीने में संयम लिया 15 दिन का। बोले ठीक है, तुमने शुक्ल पक्ष का लिया है उसका निर्वाह हम कर देंगे, लेकिन हमारा निर्वाह भी तुम्हें करना पड़ेगा, हमने कृष्ण पक्ष के 15 दिन का लिया है। अब देखो, और ये पूरी घटना आई है उसमें शास्त्रों में, जीवन भर वे साथ में रहे और भाई बहन के समान एक दूसरे के प्रति प्रेम तो रहा लेकिन एक दूसरे के व्रत में सहयोगी बने रहे। ऐसे लोग भी उदाहरण स्वरूप हमारे सामने हैं। यहाँ तो व्यक्ति से एक दिन का संयम रखना दुर्लभ हो गया है। 70-70 साल 80 साल के हो जाने पर भी आजीवन संयम लेने का भाव नहीं उत्पन्न होता है। इसलिए ये चीज अंतरंग परिणामों की है भैया, इसको संभालने की आवश्यकता है। देशभूषण कुलभूषण महाराज का उदाहरण भी सबको उजागर है, सबके सामने है, हैं कि दोनों भैया पढ़ने चले गए गुरुकुल में, 12 बरस के बाद लौटने वाले थे। बहन तो उस समय छोटी थी, उन्हें याद ही नहीं है। बहन जब तक बहुत बड़ी हो गई, जब ये दोनों लौटे राजमहल में आते थे रथ पर सवार हो करके, तो राजमहल के सामने रथ रुका तो दृष्टि ऊपर उठाकर देखा तो वहां पर वो बहन खड़ी हुई थी। ये तो जानते नहीं थे कि कौन है, तो मन में आया कि विवाह करूं तो इसी के साथ करूं। दूसरे भैया के मन में आया कि विवाह करूं तो इसी के साथ, और एक साथ ये भी मन में आ गया कि अगर दूसरा कोई बाधक बनेगा तो मैं उसके प्राणों को ले लूं। ऐसा विचार आ गया, और ऐसा विचार अभी चल ही रहा था उतने में राजा ने और रानी ने आकर कहा कि अरे बेटे जल्दी से दोनों भैया की आरती तो उतारो, वे तो अपने विचार में खोए थे। और जैसे ही उनकी दृष्टि सामने पड़ी तो वो जो राजमहल की छत पर दिखी थी वही तो यहाँ पर आरती उतारने खड़ी, और कहते कि भैया की आरती उतारो, इसका अर्थ है कि मेरी बहन है। धिक्कार है दोनों के मन में उस समय, ऐसा विचार आया कि धिक्कार है, ये आकांक्षाएं ये कामनाएं जो हमारी बहन, उसी के प्रति हमारे मन में ऐसा भाव आ गया। कहते वहीं पर और वस्त्र आभूषण उतार करके डाल दिए, और दोनों जो है रथ से उतर करके सबको प्रणाम करके जंगल में चले गए। देशभूषण कुलभूषण महाराज बन गए और तपस्या करके उन्होंने अपना कल्याण कर लिया। दृष्टि में इतना ही अगर निर्मल दृष्टिकोण आ जावे तो ब्रह्मचरी है। मुझसे लोग जब भी इस बारे में पूछते हैं तो इतना ही कहता हूं कि भाई अकेले दूरी से काम नहीं होता, मन निर्मल होवे। नहीं तो लोग सात हाथ की दूरी बताते कि मुनि महाराज से सात हाथ दूर रहो भैया, रहो डिसिप्लिन है, ये तो हमें मालूम है कि सात हाथ दूर रहो, लेकिन बाहर से जितने दूर हो उतने ही भीतर से रहो। तो बाहर से तो सात हाथ हो, भीतर से नहीं है इंच भर, तो का काम को ब्रह्मचर्य। और सात ही हाथ की चर्चा है तो भयाने से भैया फिर ऐसो करबू करे कि बस चमची बांधने पर है एक उमेन पास में, जब दे पे हो सात हाथ दूर कह सात हाथ लिखी है, हाँ पास में बांधने पर चमची बांध, जब तो सात हाथ हुई है बापू, मैं तो एक ही हाथ की हो चमची। तो वहां उसका आशय इतना सीधा सीधा नहीं है, वहां पर अनुशासन और विनय की बात है, वहां पर अंतरंग से दूरी की बात है, अंतरंग परिणामों की निर्मलता की बात है। बाह्य में तो निर्मलता होनी ही चाहिए, अंतरंग में भी निर्मलता होनी। मैं निमित्त को निषेध नहीं कर रहा हूं, पर अपने उपादान को संभालने की बात भी अपन को करनी चाहिए। निमित्ताधीन दृष्टि मोक्ष मार्ग में संकलेश का कारण बनती है। हमें अपना उपादान पहले संभालना चाहिए, निमित्त को दोष देने से ज्यादा काम नहीं चलने वाला। अगर हम मोक्ष मार्ग पर निकले, अगर हम 10 धर्म का पालन करना चाहते, चार बातें सोचता हूं कि ध्यान में रखें तो अच्छा रहे। ब्रह्मचर्य का पालन जिन्हें करना है आसानी होए, स्वस्थ मानसिकता होना चाहिए पहली चीज, व्यक्ति का मन स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ मन मतलब किसी के बारे में भी गलत और बुरा विचार न करे, सबसे पहली आवश्यकता है स्वस्थ मानसिकता, सबके बारे में अच्छा विचार। और फिर कहते इंद्रियों का क्रमशः संयम करे, पांचों इंद्रियों के लिए नियंत्रण में रखे, ये दूसरा अभ्यास है। और तीसरा जिनको साथी बनाए वे पवित्र हों, साहित्य पढ़े तो अच्छा पढ़े, अच्छे मित्र अच्छे साथी और अच्छा साहित्य, यही हमारे जीवन में संयम के लिए आवश्यक है। और चौथी बात है जो विनोबा ने लिखी कि व्यक्ति भगवान की प्रार्थना करे तो ब्रह्मचर्य और संयम उसका सद सकता। मैं पढ़ करके दंग रह। की बात बहुत सही है। भगवान के वितरागता के सामने बैठ करके और हम जब पूजा आराधना करते हैं और जब उनकी भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं, तब देखो क्या उस समय कोई भी इंद्रियों के विषय या की विकार हमारे भीतर आते हैं। कहते जो 24 घंटे भगवान की पूजा और भगवान की प्रार्थना करता रहे, जिसके सामने भगवान 24 घंटे हैं, वो व्यक्ति तो अपने मन को सहज रूप से पवित्र कर लेगा। तो कहती भगवान की प्रार्थना निरंतर जिसके मन में चलती रहे, वही व्यक्ति इसको ब्रह्मचरी धर्म को अपने जीवन में पालन कर सकता है। बहुत बातें हैं, ब्रह्मचरी अनुव्रत भी कहा गया है, सब अनंत वासना है, किसी एक पर सीमित कर ली। राम और सीता का उदाहरण, आदर्श गृहस्थ का उदाहरण है कि एक समय था कि जब रामचंद्र जी जो है सीता जी को छोड़ चुके, तब सीता ने क्या कहा कि धर्म को नहीं छोड़ना, ये है एक दूसरे के कल्याण में सहयोग बनने वाला रिश्ता। और फिर जब उसके बाद अग्नि परीक्षा हो गई, तब रामचंद्र जी निवेदन कर रहे हैं कि आ जाओ घर चलो, नहीं अब हमने गृहस्थी का जितना कर्तव्य था वो पूरा कर दिया, आप धर्म ध्यान में लगे रहो, हमें धर्म करने दो, हम तो आरी का माता बन जाएंगे और सीता जी आरी का माता। अपने पुत्र को धर्म सौंप करके संसार से विमुक्त हो जाने का नाम गृहस्थी है। सच्ची गृहस्थी तो उसकी है जो पुत्र के योग होते ही अपना सारा धर्माचरण और चावी उसके हाथ में सौंपता है और कहता कि बस इतने ही के लिए हमने गृहस्थी करी थी, हमने भी अपने जीवन में संयम धारण करने के लिए कि पता नहीं किस किस के प्रति मन खराब होगा, हमने एक को छोड़कर बाकी सबके प्रति अपना मन पवित्र कर लिया, इतना संयम तो गृहस्थी में रह के कर लिया, अब उस एक के प्रति भी हम अपना भाव बदल लेते हैं और विशुद्ध मन से निर्मल मन से अब साथ में रहेंगे। अगर गृहस्थ भी इतना करे तो उसके जीवन में भी ये धर्म आसानी से आ सकता है। भाई और विशेष मैं क्या कहूँ, सब लोग इस बारे में दसों धर्म के बारे में जरूर से विचार करें और जिससे जितना संयम बने। अब तो अवसर भी जो है, देखो हम सवेरे कह रहे थे कि कल 6 तारीख आने वाली है, है? और भूले ही गए 2 महीने होने को हैं, लेकिन पता लगे कि कैसे जो है समय बीत गया, धर्म ध्यान में बीत गया और आसानी से समय बीत गया। क्या ऐसा ही पूरा जीवन नहीं हो सकता? ऐसा ही पूरा जीवन बनाओ तो ऐसा ही हो सकता। और अब थोड़ा समय शेष है अपने को, ये पीछी जो है इसी का उपकरण है, जो व्यक्ति संयम लेगा उसी के हाथ में ये शोभा देती है आने वाले अवसर पर। इसके लिए भी अपन को साधना करनी चाहिए, संयम की साधना करनी चाहिए, जिससे जितने दिन का बने। वैसे तो हमारे पास अभी से जो है, आप आश्चर्य करोगे कि अरे महाराज के पास कैसे आ जात के थे नहीं, अबे हमारे पास 15-20 नाम तो अबे आ गए, अबे हमने चर्चा लो नहीं करी। आज अभी हमने कहा है आपसे, हमारे पास अभी संयम लेने वालों के ले चुके जो अपने जीवन भर के लिए 15-20 नाम तो आ चुके। देखो जितना जिससे बने, मैं तो ये कहता हूं अपने जीवन में संयम लेना, उसको संयम ही कहेंगे अपन कि हमारा इतना संयम है, 8 दिन का संयम है, अष्टमी चतुर्दशी का है, पर्व के दिनों का है, ये क्या कमती बात है। इतना भी अगर अपने जीवन में अपन लेते हैं तो आज का दिन हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन लाएगा, हमें शांति और सुख मिलेगा। इसी भावना के साथ में कि हम सबको ऐसा ये संयम का दिन, ब्रह्मचरी का दिन, निर्मलता का दिन हमारी दृष्टि में, हमारे परिणामों में निर्मलता लावे और हम अपने जीवन को सफल बनाएं, इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि। नाश वेखो ज्ञान के प्रकाश वेखो आपा पर वास वेखो मानु सेवा खानी है। अनुभव बताए वे को जीवों के जय सताए वे को काबू न सताए वे को बापे और आनी है
मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु में हितेशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की। आज भी शायद यही कहूंगा कि एक दिन और हमारे पास है जिसमें हम अपने बाबत विचार करें और शायद ये एक ही दिन और शेष रहा है हमारे हाथ में पूरे एक वर्ष में जो शायद कभी धर्म की बात भी सुनना पसंद नहीं करते हैं उनने भी बहुत कोशिश करके इन 10 दिनों में थोड़ा सा धर्म करने की कोशिश तो की है। ये 10 दिन देखो कितने कीमती हो गए कि 355 दिन पर भारी हो गए। जिसने कभी मंदिर आने का नहीं सोचा होगा वो भी ये सोच के कि चलो पर्युषण लगे हैं 10 लक्षण लगे हैं चलना चाहिए, दर्शन तो करके आते हैं। आज भी ये भले ही परंपरागत पर्व हो पर इनका महत्व तो है। हमने शुरुआत की थी धरती से, क्षमा से, और आज हम समापन करेंगे आकाश से, ब्रह्मचर्य से। ब्रह्मचर्य के मायने बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। आकाश की तरह निर्मल हो जाना और आकाश की तरह सबको समान भाव से अपने हृदय में जगह देना, इसी का नाम ब्रह्मचर्य है। एक वृक्ष की तरह हम इस यात्रा को देखें तो बहुत आसान होगा। हमने 10 दिन जो यात्रा की है, एक बीज गिरता है जमीन के भीतर, जब वो झुकना पसंद करता है, जब वो गिरना पसंद करता है, जब वो धरती को अपने आप को दे देता है, तब उसकी यात्रा शुरू होती है और फिर गलना स्वीकार करता है। गिरना धरती की तरह हो जाना और उसके बाद गलना, वो विलय है। जब वो गलता है तभी उसमें अंकुरण होता है, और अगर सीधा सीधा ना हो, टेढ़ा मेढ़ा निकले, तो कहीं वही जमीन में खो जाएगा, सीधा निकल करके बाहर आता है। ये सीधापन ऊंचाइयां देता है। और फिर कभी आपने देखा कि उसके ऊपर कैसे थोड़ी सी माटी उस बीज के ऊपर लगी रहती है, वो माटी जब हट जाती है तब पूरी तरह से रोशनी में आता है वो पौधा। वो माटी हटना विकारों को जीतना है, लोभ को जीतना है, पवित्रता को प्राप्त करना है, और जो बाहर निकल करके प्रकाश का, रोशनी का अनुभव है, वही तो सत्य धर्म है, वही तो सच्चाई का अनुभव है। फिर क्या करते हैं, बहुत छोटा सा पौधा है, बाल लगाना पड़ेगी, नहीं तो गाय अड्डी आकर के पैर रख देगी या कि मुंह मार के चली जाएगी, खा जाएगी। तो एक बाल लगा देते हैं उसकी रक्षा के लिए, सच्चाई की प्राप्ति के बाद बुराइयों से बचने के लिए जो हम अपने को संयमित कर लेते हैं, उसी का नाम तो संयम धर्म है। वो हमने बाल लगा ली है और फिर धीरे धीरे पौधा बढ़ता है, फिर इतना बढ़ना शुरू करता है कि आग बरसे, चाहे पानी बरसे, चाहे ठंड पड़े, सब सहन करता है, बड़ी तपस्या करता है, तब वृक्ष बड़ा होता है। और बड़ा होकर के फल फूलदार होता है, फिर जब फल फूल से लग जाता है तो अपना आप देना शुरू कर देता है, जो बढ़ जाता है वो दे सकता है। और फिर त्याग शुरू होता है, सब ले जाओ, पूरे फल निकाल के ले जाओ, फूल निकाल के ले जाओ, सुगंध ले जाओ, सब कुछ देना शुरू कर देता है। और देते देते फिर एक दिन अकेला, एकाकी, जब तक देता है तब तक तो सब लोग आते हैं उसके पास। जिस दिन उसके फल और फूल सब खत्म हो जाते हैं उस दिन कोई नहीं आता, तो एक अकेला चुपचाप एकाकी, फिर भी मन में कोई विकल्प नहीं उसके कि कोई क्यों नहीं है उसके पास, वो सफिशियंट है अपने लिए, वो पर्याप्त है, ऐसा चुपचाप खड़ा रहता, फिर भी छाया देता रहता है। जो आकिंचन को उपलब्ध होता है उसकी छाया सबको मिलना शुरू होती है, और उसकी ऊंचाई कहां जाती है, आकाश में। वो आकाश की ऊंचाइयां छू लेता है वो पौधा। ठीक इसी तरह से अगर हम अपने जीवन के इस बीज को क्षमा की धरती में बोते हैं तो एकदम आकाश की ऊंचाइयां पाते हैं, ब्रह्मचर्य की ऊंचाइयां पाते हैं। बहुत आसान से हमारे 10 धर्म आज के दिन हमने शायद प्राप्त कर लिए होंगे। ब्रह्मचर्य के सीधे सीधे अर्थ हैं, आत्मलीनता का नाम ब्रह्मचर्य है, लेकिन आत्मलीनता इतने जल्दी सदती नहीं है, तो क्या करें। तो कहते हैं देह के प्रेम से हटकर आत्म प्रेम की तरफ बढ़ना, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। देह प्रेम से पार होकर के, ऊपर उठ करके आत्म प्रेम की तरफ बढ़ना, इसी का नाम तो अपने आत्मा से भी प्रेम और प्राणी मात्र की आत्मा से प्रेम। अभी तो अपनी देह से प्रेम हो जाता है तो उसको सजाने में लग जाते हैं, दूसरे को अपनी देह से रागान्वित करते हैं या कि दूसरे की देह से स्वयं प्राप्त करते हैं। तो कहते दूसरे की आत्मा से प्रेम करो, अपनी आत्मा से प्रेम करो, तब जीवन में ब्रह्मचर्य आसानी से घटित हो सकता है। ऐसे आत्म प्रेम या कि प्राणी मात्र से प्रेम का ये धर्म है, इसकी शुरुआत यहीं से होती। जैनेन्द्र कुमार को तो लिखना पड़ा कि मुझसे कोई कहे कि ब्रह्मचर्य क्या है, तो मैं कहूंगा सबके प्रति प्रेम का नाम ही। दूसरी जगह लिखते हैं कि ये कैसे घटित होता है जीवन में, तो कहते हैं कि मातृत्व का विस्तार हो जाए तो ये घटित हो जाता है। गांधी जी ने स्वयं अपने जीवन में एक दिन जब किसी ने बाबाजी में देखी थी तो कहा कि ये कौन है, आपकी मां है क्या? तो थोड़ी देर तो सोच में पड़े, फिर बोले कि हां बा हमारी मां है, आज से हमारी मां हो गई। जबकि बा से उन्होंने विवाह किया था और एक स्थिति में पहुंच के वो मां हो गई। बोले बापू आप कैसे कहते हैं कि बा मां है? बोले मैं तो सोच में पड़ गया था कि सचमुच ये मां ही तो है, सवेरे से हमको जगा देती है कि उठो समय हो गया, 4 बज गए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। तो हम के कहने से, जैसे मां के कहने से बेटा जागता है सुबह, ऐसे ही हम जाग जाते हैं। फिर नहलाने धुलाने की हिदायतें देती हैं, कभी कभी हमसे नहाते धोते नहीं बनता तो नहलाती धुलाती भी, फिर कहती कि बैठो और परोसती हैं और मां की तरह पंखा हिलाती रहती हैं और हमको भोजन कराती हैं। फिर रात हम लौटते हैं तो सुला देती हैं कि सो जाओ बहुत देर हो गई। तो ये तो दिन भर हमको मां की तरह ही तो हमारे साथ व्यवहार करती, इसलिए हम आज कहते हैं कि बा हमारी मां हो गई है। उस दिन ब्रह्मचर्य घटित हो गया। जैनेन्द्र कुमार ने लिखा कि ब्रह्मचर्य की बड़ी बड़ी परिभाषाएं बनाने वालों से मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति जितना ज्यादा जिस चीज का निषेध करता है उसके पीछे उसका उतना ज्यादा राग कहीं ना कहीं छुपा होता है, जितना निषेध करता है। इसलिए नहीं, इसको देखो मत, आंख फोड़ लो, आंख फोड़ने से ब्रह्मचर्य उपलब्ध होता तो जो आंख वाले नहीं उनको सबको हो गया होता, पहले से ही हो गया होता उनको। कहते ऐसा अर्थ नहीं, वो लिखते हैं कि मैं अपने पिता की जीवन साथी को अपनी मां मानता हूं। बहुत सीधी सी बात है, ये तो कोई भी कह देगा, मैं अपने पिता की जीवन साथी को अपनी मां मानता हूं और अब तो मैंने अपने बच्चों की मां को भी मां कहना शुरू कर दिया है। हो गया मेरा ब्रह्मचर्य घटित हो गया। कोई बहुत कठिन सी चीज नहीं, मुझे तो इस चीज का अनुभव था नहीं, जब मुझे एक घटना हमेशा याद आती है और ऐसे मौके पर सुनाता हूं कि जिसने मुझे इसकी परिभाषा समझाई थी और इतने आसानी से समझा दी थी उसकी याद तो आई जाती है, भले ही वो पूरे जीवन में संबंधी रही हो। वो बुआ जी थी और आचार्य महाराज के पास सन 77 में मुझे लेकर के जाया करती थी, तो मैं उनके पास बैठा रहता था, समझता तो था नहीं क्योंकि आचार्य से जो डिस्कशन चलता था बड़ा कठिन कठिन, अपने पसंद आते नहीं था अपने, पर उनके साथ जाना है वो लेके गई है तो बैठे रहते थे। एक दिन उन्होंने व्रत लिया आचार्य से कि हमारा ब्रह्मचर्य व्रत है साल भर के लिए। तो हमने बाहर आके कहा कि इसके मायने क्या होता बुआ, ये ब्रह्मचर्य के मायने क्या होता? बोले बेटे तू नहीं समझेगा, कभी बताऊंगी। उस समय इतना छोटा भी नहीं था, 20 बरस का था, पर मुझे तो नहीं मालूम था कि ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं। एक दिन मैं उनके घर पहुंचा तो बैठा हुआ था और वो पलंग पर बैठी थी, मैं कुर्सी पर बैठा हुआ था। उतने में जो है वो फूफा जी आ गए और आते ही साथ उनके बाजू में बैठ गए, पलंग पर ही बैठ गए। वो अजी मुस्कुराई, मेरी तरफ देखा और बोली बेटे तू इधर आ मेरे इस तरफ बैठ। तो मैं भी उनके बाजू में बैठ गया, दोनों के ऊपर उनका हाथ रखा है, मेरे ऊपर भी एक हाथ है और एक हाथ फूफा जी के ऊपर रखा। और मेरे से बोली एक दिन तू पूछता था ना कि ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं, आज बताती हूं। अभी पूरी तरह से मेरे जीवन में आया नहीं है, अभी जो धारा तेरे ऊपर जो हाथ रखा उसमें बह रही है वो इस तरफ के हाथ में नहीं बह रही। जिस दिन ऐसी धारा इस हाथ में बह जाएगी उस दिन मेरा ब्रह्मचर्य हो जाएगा, इसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं। इस एक हाथ में कुछ और स्पर्श है, इस एक हाथ में कुछ और स्पर्श है, जब दोनों का स्पर्श तेरे के समान एक बेटे के समान हो जाएगा उस दिन मेरा ब्रह्मचर्य संपन्न हो जाएगा। तब की परिभाषा आज भी मेरे समझ में आती है। शायद जीवन में इतनी पवित्रता हमारे आती है कि हमें सिवाय दूसरे में ब्रह्म के, परमात्मा के कुछ और दिखाई नहीं पड़ता, अनचेस्टिटी होने का सवाल ही नहीं उठता है अगर कहीं किसी को परमात्मा और आत्मा दिखाई पड़ जाता है। लेकिन दोनों जब ब्रह्म दिखाई नहीं पड़ता है, जब अपने ही भीतर का ब्रह्म नहीं दिखाई पड़ता है, तो प्राणी मात्र में वो ब्रह्म कण कण में भगवान
भगवान विराजे हैं ये कहां दिखाई पड़ेगा, तो फिर हम उसके प्रति अपने व्यवहार को पवित्र कहां बना पाएंगे। पर जिसने ब्रह्म को देखना शुरू कर दिया अपने भीतर और प्राणी मात्र के भीतर, वो ब्रह्म में रमण करना शुरू कर देता है, वो आत्मा में लीन होना शुरू कर देता है, उसी का नाम ब्रह्मचरी है। ब्रह्मचरी और कोई बहुत बड़ी सी चीज नहीं। मैं तो सोचता हूं व्याख्या जो मैं कभी करा करता था, आज एलक जी के मुंह से वो सुन करके बहुत अच्छा लगा कि मैं जो इस तरह की बात सोचता था वो बात सही है। उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो माता बहन सुता पहचान। उत्तम ब्रह्मचर्य की इतनी ही परिभाषा मेरे समझ में शुरू से आती रही, सो आज भी वही परिभाषा समझ में आती है कि हमारा प्रेम हमारा वात्सल्य इतना पवित्र हो जाए कि उसके बीच में से वासना निकल जाए। क्योंकि जब जब भी हम चीजों को व्यक्ति को और वस्तुओं को देखते हैं तो सबसे पहले आकर्षण हुए बिना नहीं रहता है। आकर्षण होता है तो धीरे धीरे लगाव बढ़ना शुरू होता है, और अगर वो लगाव आत्मा के प्रति है तो वही लगाव कल्याण का कारण बन जाता है, और वही लगाव यदि देह के प्रति है और इंद्रियों के प्रति है, इंद्रिय के विषयों के प्रति है, तो वही लगाव जो है वो संसार की तरफ ले जाता है। लगाव बुरा नहीं है, लगाव के प्रति हमारे दृष्टिकोण की बात है। सुखदेव नग्न होकर के चले जाते थे रास्ते से, नदी के किनारे से गुजरते थे, और सुखदेव नग्न 20-22 वर्ष के सन्यासी और नग्न निकल गए। जो बहने नहाती थी, माताएं नहाती थी, स्नान करती थी, किसी ने अपने कपड़े तक नहीं संभाले और नहाती रही, और सुखदेव के 80 वर्ष के पिता वहां से गुजरे तो सबने अपने अपने कपड़े संभालना शुरू कर दिए। उनके पिता को बहुत गुस्सा आई कि अभी मेरा लड़का गुजरा है तो इनको शर्म नहीं लगी, और मैं इतना बूढ़ा हो गया और इनको शर्म लग रही है अपने कपड़े संभाल रहे हैं। तो पूछ लिया कि जब मेरा 22 वर्ष का बेटा और नग्न, मैं तो कपड़े पहने हूं, फिर भी तुम अपने कपड़े संभालने लगी। तब उन बहनों ने क्या जवाब दिया था कि अपनी आंख संभाल लो तो हमें कपड़े नहीं संभालना पड़े। सुखदेव को तो हमारी क्या, उसको तो अपनी तक तो जरूरत नहीं थी, उसको तो परमात्मा की इतनी तल्लीनता है कि उसने हमारी तरफ देखा ही नहीं, पर तुम्हारी आंख संभली नहीं है, तुम्हारी आंख संभाल लो तो हम कपड़े नहीं संभालेंगे, तुम्हारी आंख गड़बड़ हो जाती इसलिए हमें कपड़े संभालना पड़ते हैं। इतना ही ब्रह्मचर्य मेरे ख्याल से मैं तो अभी तक इतना ही समझ पाया। और कौन सा उदाहरण आपको दूं? दृष्टि की निर्मलता और मातृत्व का विस्तार शायद इससे ज्यादा और कोई धर्म की शुरुआत नहीं है, और आज यही हमारे नैतिक पतन का कारण बन रहा है। हम भले ही बहुत दूरी रख रहे हों लेकिन हमारे भीतर कितना अधिक राग और विकार बैठा हुआ है ये कौन देख पाता है, और यही हमारे नैतिक पतन का कारण बन रहा है। हमारी विकृत दृष्टि, उसी को हमें सुधार लेना है। जब आम्रपाली जो कि नगर वधू थी, जब बुद्ध के विहार में पहुंचने वाली थी, आने वाली थी, तो भिक्षुओं ने कहा कि हम भिक्षुओं को क्या आदेश है, देवी आम्रपाली आने वाली है, सबसे सुंदर है वैशाली की, और वे आने वाली है बुद्ध के दर्शन करने, हम भिक्षुओं को क्या आदेश है। तो बुद्ध ने कहा कि भिक्षुओं को कह दो कि जब देवी आम्रपाली आए वे अपनी आंख नीचे कर लें। भिक्षुओं का आदेश जारी हो गया, पर किसी भिक्षु ने कहा कि यदि देवी आम्रपाली दिख जाए तो, हमने आंख नीचे कर ली फिर भी दिख जाए तो। तो बुद्ध का दूसरा आदेश जारी हुआ कि कह दो अगर दिख जाए तो देवी आम्रपाली को देख लें। पहली दृष्टि, पहली बात क्या कही थी कि आंख नीचे कर लें जब वो आए तो। असल में आंख ही नीचे हो जाए ना तो सारा खेल हो जाए। आंख नीचे नहीं हो पाती, दूसरे की आंख नीचे करने की कोशिश जरूर होती है, अपनी आंख नीचे हो जाए तो। दूसरा आदेश जारी हुआ था कि अगर देवी आम्रपाली दिख जाए तो देख लेना, पर देखने की कोशिश मत करना, दिख जाए तो देख लेना। पर किसी भिक्षु ने और आगे बढ़कर के प्रश्न पूछवाया कि जाकर के बुद्ध से पूछें कि अगर कोई भिक्षु देवी आम्रपाली को देखना चाहे तो क्या आदेश है। तो बुद्ध ने तीसरा और आखिरी आदेश जारी किया था कि जाओ, ये अंतिम आदेश है भिक्षुओं को, कह दो कि देवी आम्रपाली आए तो वे देवी आम्रपाली को जी भर के देखें, लेकिन आसक्त न हो। आखिरी आदेश है, पहली बार की व्रत की नीति कर लेना, दिख जाए तो देख लेना, देखने की चेष्टा मत करना, अगर देखने की इच्छा भी हो देख लेना, पर आसक्त मत होना। इसी का नाम ब्रह्मचर्य है, चाहे जैसे आप उसको प्रदर्शित करना चाहें। और एक घटना आपको सुनाता हूं, मैंने बहुत पहले नवनीत में कविता, पहले कविता सुना देता हूं, आचार्य महाराज को बहुत पसंद आई थी ये कविता। अभी तुमने आग के रंग के कपड़े पहने, गेरुए वस्त्र धारण कर लेते हैं सन्यासी, अभी तुमने आग के रंग के कपड़े पहने हैं, अभी तुम्हारा काम योग की आग में जला नहीं है, अभी तुम्हारा काम योग की आग में जला नहीं है, तभी तो फर्क नजर आता है स्त्री और पुरुष में, तभी तो फर्क नजर आता है स्त्री और पुरुष में, स्त्री के पीछे भागना और स्त्री से दूर भागना यात्रा दोनों में जारी है, स्त्री के पीछे भागना और स्त्री से दूर भागना यात्रा दोनों में जारी है, जब तक ये यात्रा जारी है तब तक संन्यास की यात्रा अभी शुरू नहीं हुई है। एक बौद्ध भिक्षु जो कि बहुत युवा था, अपने बौद्ध भिक्षु के साथ नदी के किनारे जाता था, अचानक देखा कि एक बहन, कम उम्र वाली बहन, और नदी में डूब रही है, बचाने के लिए हाथ उठा रही। उस युवा भिक्षु ने यहां वहां नहीं देखा और कूद करके उस बहन को उठा करके नदी के किनारे रख दिया। जो बूढ़ा वाला भिक्षु था उसने आंख देखी, गौर से घूर करके देखा, पाप कर दिया तुमने, वो उसको पूरे रास्ते जब तक कि मैं डूबे से कहूंगा, तुमने उसका स्पर्श किया, तुमने उसे बाहर क्यों निकाला, और युवती थी वो भिक्षु जो नवयुवक था चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा। जाकर के उस वृद्ध भिक्षु ने बुद्ध से कहा कि इस भिक्षु ने ऐसा ऐसा करा है, इसे प्रायश्चित दिया जाए। तो मालूम बुद्ध ने क्या कहा कि प्रायश्चित के भागी तो तुम हो, उसने तो उसे उतार के वहीं रख दिया, तुम तो यहां तक ले आए उसके लिए, उसने वहीं निकाल के छोड़ दिया, भूल गया वो कि कौन था कौन नहीं था, तुम यहां तक भूल रहे हो, तो अभी तक उसका स्पर्श कर रहे हो, प्रायश्चित के भागीदार वो नहीं तुम। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि हमारे दृष्टिकोण की बात है, कि हमारे दृष्टिकोण में पवित्रता है या अपवित्रता है। आज अगर हम अपने दृष्टिकोण को पवित्र बना लें तो हम ब्रह्म को हर जगह देख सकते हैं और उस ब्रह्म में रमण कर सकते हैं। अनुव्रत, महाव्रत और ब्रह्मचर्य प्रतिमा तीनों रखे हैं, पशुओं ने कभी संबंध नहीं बनाए। मनुष्य होशियार है और उसकी होशियारी उसको गिरा भी सकती, उसकी होशियारी उसे संभाल भी सकती, इसकी बहुत होशियार लोगों ने, बहुत समझदार लोगों ने पशुओं के जैसे संबंध नहीं बनाए हैं, उन संबंधों को परिष्कृत किया है। पशुओं में मां बेटे का संबंध नहीं होता है, वहां सिर्फ दो ही है, स्त्री और पुरुष, लेकिन यहां मनुष्य ने डेवलप होकर के संबंध बनाना शुरू किए हैं कि ये मां है तो ये बहन है तो ये बिटिया है। बस इतने संबंध उसने बना करके अपने को बहुत सीमित कर दिया है। कहते इसी का नाम ब्रह्मचर्य अनुव्रत है, किसी एक के साथ हमने अपना संबंध स्थापित, वैवाहिक जीवन, और वो भी क्यों, मुझे एक ऐसी संतान उत्पन्न करनी है जो धर्म के मार्ग पर चल सके और मेरे परंपरा को निभा सके, इसलिए विवाह करना है। और विवाह का कोई मकसद नहीं है, महापुराण पढ़िए, उसमें लिखा है कि विवाह की परिभाषा क्या है और विवाह का मकसद क्या है। एक ही मकसद है कि मैं पूरी तरह से ब्रह्मचर्य महाव्रत को अंगीकार नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए अनुव्रत लेता हूं। अनुव्रत में भी ब्रह्मचर्य है, किसी एक के साथ संबंध रखना भी ब्रह्मचर्य कह रहे हैं। इसके मायने क्या है, इसके मायने ये है कि जो हमारी दृष्टि थी वो सबके प्रति पवित्र हो रही है, इसलिए ब्रह्मचर्य, हालांकि आंशिक रूप से है, पूरी तरह से नहीं है हम सही में, इसलिए चार बातों का ध्यान इसको प्राप्त करने के लिए रखा जा सकता। दृष्टिकोण तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। लोग बाहर से 7 हाथ की दूरी की बात करते हैं और भीतर से 1 इंच की दूरी भी नहीं रखते हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि बाहर से से भले ही इंच भर की दूरी ना हो पर भीतर से दूरी बनाए रखिए। और कम से कम दूसरे के लिए कोई भी देखता है तो बस एक ही दृष्टि से देखता है, लोग बात कर रहे होंगे तो हर व्यक्ति कोई दूसरा संबंध भी उसको नहीं आता, मेरे ख्याल से एक ही संबंध आता है, दूसरा संबंध तो आते नहीं। आज इतनी विकृत दृष्टि हो गई, अपने से बहुत पवित्र मानने वाले लोगों की बात मैं आपसे कर रहा हूं कि अगर कोई खड़े होकर के और दो लोग बैठ के बात कर रहे होंगे वो बहन भी होगी, तब भी उनकी पहली दृष्टि यही जाएगी, गलत दृष्टि ही जाएगी, भले ही बात करने वाले की गलत दृष्टि ना हो। इसका परिणाम सीता जी को मिला था, पूर्व जीवन में उन्होंने जो मन में भाव ला लिया था एक मुनि महाराज जी और उनकी गृहस्थ अवस्था की बहन बैठ करके तत्व चर्चा करती थी, और सीता जी का पूर्व जीवन का जीव उसने इतने विचार कर लिया था कि अच्छी जोड़ी बनी, उन साधु के प्रति ऐसा भाव करने का परिणाम ये लगा कि उनके ऊपर एक छोटे से आदमी ने इतना बड़ा अपमान लगा दिया। लेकिन ध्यान रखना वे पतिव्रता थी, और कितनी बड़ी पतिव्रता थी, राम और सीता जी का जो जीवन है सबसे आदर्श जीवन माना गया है, कितनी पतिव्रता थी। कभी आप पद्म पुराण उठा करके देखिए, जब अग्नि में प्रवेश की बात करी जाती है कि दिव्य न्याय होगा कौन सा पसंद है, तो अपने आप स्वीकार करती है कि अग्नि में गुजर करके बता सकती हूं, तो गुजरो अग्नि से। और कहते हैं कि ओम नमः सिद्धेभ्यः कह के सीता जी ने श्लोक पढ़े थे। क्या श्लोक का आशय था कि हे अग्नि, यदि मैं स्वप्न में भी राम के सिवाय अन्य किसी पुरुष का स्मरण भी किया हो तो तू मुझे क्या जलाएगी, मैं तो पहले ही जल के नष्ट हो गई। अग्नि के सामने खड़ी है और कह रही है कि हे अग्नि, अगर मैंने स्वप्न में भी राम के सिवाय अन्य किसी को चाहा होगा, स्मरण भी किया होगा स्वप्न में भी, तो तू क्या मुझे जलाएगी, मैं तो अपने आप ही जल के मर गई। और अगर मैंने नहीं किया है तब भी तू मुझे क्या जलाएगी, मैं प्रवेश करती हूं। अगर मैंने किसी का स्मरण राम के सिवाय और किसी को नहीं चाहा तो तू मुझे क्या जलाएगी, मैं अभी प्रवेश करके बताती हूं। प्रवेश कर गई थी, देवों ने जय जयकार करना शुरू कर दी थी, और उस समय देखने लायक था कि जिसने अकेला अनुव्रत लिया था, ब्रह्मचर्य अनुव्रत था, सिर्फ राम को ही अपना माना था, इसके अलावा सबके प्रति दृष्टि में निर्मलता थी। उनका चमत्कार देखिएगा कि पूरे में पानी पानी हो गया था, और फिर तो सबको बचना मुश्किल हो गया था। सीता जी अकेले कमल पर स्पष्ट जलते भिन्न कमल है, जैसे ऐसा ही एक गृहस्थ में रह करके भी और एक गृहिणी को अपने साथ रखकर भी वैवाहिक जीवन जी करके भी कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य अनुव्रत से रह सकता है, और उसका महात्म अगर देखना है तो कभी सीता जी के जीवन का आदर्श देख लीजिएगा कि कमल के ऊपर विराजी है, रामचंद्र जी के चरणों तक आकर के पानी रुक गया था कि बोलो क्या करना है। और उसके बाद जब वो आरी का दीक्षा ले लेती हैं तब रामचंद्र जी भी उनको आरिका माता को प्रणाम करते हैं कि मां प्रणाम। सीता राम कहते हैं, सबसे पहले सीता जी का स्मरण करते हैं, वो पहले आरिका बनी थी, रामचंद्र जी ने तो बाद में ग्रह परित्याग करके और आत्म साधना करके मुक्ति पाई थी। एक ब्रह्मचरी आश्रम में नहीं रहने वाला, गृहस्थ आश्रम में रहने वाला व्यक्ति भी इतनी ऊंची साधना कर सकता है, इसके मायने हैं कि आज हम भी अगर चाहें तो इस ब्रह्मचर्य को अपने जीवन में रखते हैं। इतना ही है ध्यान रखने लायक कि मानसिक स्वस्थता रहे, स्वस्थ मानसिकता रहे पहली बात, और दूसरी चीज इंद्रियों का क्रम क्रम से हम संयम रखें और ऐसे लोगों के साथ रहें जो कि चारित्रवान है, उन्हीं से मित्रता रखें, उन्हीं का सानिध्य पाएं, वैसा ही साहित्य अपन पढ़ें जिससे हमारा चारित्र का विकास हो। घटिया साहित्य पढ़ेंगे, घटिया लोगों के साथ रहेंगे, हम तो ये जानते हैं कि जिसकी जैसी आदत उसको वैसे लोग मिल जाते हैं, उसके आसपास आप देख लीजिए जो जैसा होगा उसके आसपास वैसे ही लोग अपने आप जुड़ जाएंगे, जोड़ने की भी आवश्यकता नहीं। पर आप सावधानी रखिए, अगर आप चारित्रवान अपने को बनाना चाहते हैं तो चारित्रवान की ही संगति प्राप्त करिएगा। और आखिरी बात, भगवान की प्रार्थना करना मत भूलिएगा। लिखा है जो गुरु के समीप रहता है या गुरु को अपने समीप रखता है वही व्यक्ति ब्रह्मचर्य से युक्त होता है, जो भगवान की प्रार्थना में निरंतर लीन रहता है वो ब्रह्मचर्य का ठीक ठीक पालन कर सकता। चार ही बातें हैं, एक तो स्वस्थ मानसिकता, और धीरे धीरे इंद्रियों का संयम, और
और एक अच्छी संगति और भगवान के प्रति ईश भक्ति जिसको कहते हैं प्रार्थना, ये चार बातें अगर जीवन में आती हैं तो आज का ये धर्म हमारे जीवन में बहुत आसानी से हम प्राप्त कर सकेंगे। मैं भावना भाता हूं कि हम सब आज इस समापन दिवस पर, इसको समापन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब फिर से ये एक साल बाद 10 दिन लौटेंगे, पर यदि हम चाहें तो इन 10 दिनों को अपने जीवन में रोज रोज घटित कर सकते हैं इनके आने से पहले, और हम अपनी तैयारी हमेशा रख सकते हैं। ऐसी भावना के साथ मैं तो इस बार यही भावना भा रहा हूं कि ये 10 दिन हम जल्दी से कल भूल नहीं जाएंगे, बल्कि 355 दिन इन 10 दिनों को याद रखेंगे कि देखो हमने कैसे और 10 दिन जिए थे, हम ऐसे 10 दिन हमेशा जी सकते हैं, कितनी पवित्रता और कितनी शांति और कितना हमने अपने इंद्रियों को संयमित कर लिया था। मैं तो कल से जो है और आज सुबह तक, बल्कि परसों से रोज जो है 100-150 लोग जो है, मैं तो सुबह से बंद रह जाता हूं जब लोग आना शुरू होते हैं, आज हमारा उपवास है, आज हमारा एक आसन है, आज तुम अकेला पानी पियेंगे, आज तुम अकेला दूध ही लेंगे, आज तुम्हारा कुछ भी मन नहीं है कुछ भी लेने का, अच्छा लग रहा है, 5 दिन हो गए हैं, 7 दिन हो गए हैं, आज तो उनका सम्मान भी होना चाहिए था जिन जिनने 8-8 दिन छोटे छोटे बच्चे हैं 18 वर्ष के 20 वर्ष के, और 5-5 दिन नहीं 8-8 दिन 9-9 दिन के जिन्होंने उपवास कर लिए हैं और अकेला पानी भी दिया है तो लिया है, नहीं तो पानी भी नहीं लिया है, इन सब का हमें जो जो सही नहीं है उसका सम्मान करने का दिन है। आप अपने मन से कम उनका सम्मान तो करिएगा कि हाँ सचमुच इन्होंने संयम धारण करके हमें भी दिशा दी है और अपने जीवन को पवित्र बनाया है। ऐसे अगर हम संयमित व्यक्ति का भी सम्मान करेंगे और अच्छे लोगों का सम्मान करेंगे तो हमारा जीवन भी पवित्र होगा। सच्चाइयों का सम्मान करना ही शायद मेरे जीवन में, मैं तो सोचता हूं, धर्म की शुरुआत है। आज 10वां धर्म का अगर हम कोई सार लेना चाहें तो इतना ही है कि हम अपने जीवन को पवित्र रखें, अपनी वाणी को पवित्र रखें और अपने शरीर को भी जितना हो सके पवित्र रखें। देह की आसक्ति से बचना ही शरीर की पवित्रता है, ऐसी इंद्रियों की आसक्ति छोड़ करके फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर पर रहा करे, ऐसी भावना भाते हुए बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज।